ओम शांति। हम सभी के बीच आदरणीय उर्मिला दीदी जी पधारे हैं। दीदी का एक हाथ से हम स्वागत करेंगे। बाबा कहते हैं, मैं कणे का घणा देता हूँ तो घणे का हिसाब भी लेता हूँ। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमारे कर्मों की बड़ी गुह्य गति है। तो आज दीदी जी हमें इसी विषय पर प्रकाश डालेंगी कि ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गहन गति क्या है। वैसे दीदी जी से आप सभी परिचित हैं ही, पहले दिन से हम मिल रहे हैं, तो मुझे ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि आप 1981 से ज्ञान में हैं, 1985 से आप समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। आपने एमए इंग्लिश में किया हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, और आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। लेखनी तब अच्छी होती है जब आपका विचार सागर मंथन अच्छा हो। तो आप अभी हम दीदी जी से सुनेंगे ही, इस विषय पे दीदी प्रकाश डालेंगे कि ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गहन गति। आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं, क्योंकि कर्म हम सभी से जन्म से जुड़ा हुआ है। बच्चा जन्म से भी पहले कर्म करना चालू कर देता है और अंतिम श्वास तक कर्म करता रहता है, और हम तो हैं ही कर्म योगी। कर्म का संबंध योग से भी है, कर्म का संबंध भविष्य से भी है, वर्तमान से भी है। तो ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गुह्य गति क्या है? क्योंकि कई बार हम मुरली में सुनते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति पाप कर्म करे तो उसका एक गुना, और अगर ब्राह्मण करे तो 100 गुना। लौकिक दुनिया में कोई पुण्य करे तो 1 गुना, और ब्राह्मण बन के अगर कोई पुण्य करे तो 100 गुना। तो गुह्य गति तो हो ही गई। जैसे मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि वो जब गेहूं साफ करती थी तो अगर एक गेहूं का दाना भी इधर उधर चला गया, बच्चे साफ करते थे तो मम्मा उस दाने को उठा लेती थी। और केवल गेहूं की बात नहीं है, चावल साफ हुए या कोई भी अनाज साफ हुआ या भंडारे में कोई भोजन बना, तो अगर कोई तिनके जितनी चीज भी वो देखती थी कि ये व्यर्थ जा रही है तो उसको बचा लेती थी। और वो कहती थी कि बाबा के भंडारे का एक एक दाना मोहर के बराबर। अब हमको ये विचार करना है कि गेहूं का एक दाना भला मोहर के बराबर कैसे हो गया? आज तो आपको पता है एक मोहर की कीमत कितनी होती है, सोना शायद 50,000 पहुंच गया। और अगर अपन 10 ग्राम की भी एक मोहर माने तो मोटा मोटी 50,000 रुपया। लेकिन ये सत्य बात है कि एक दाना मोहर के बराबर है। यही तो कर्मों की गुह्य गति है। अब कैसे मोहर के बराबर है? देखिए, जब एक गेहूं का दाना बाजार में होता है, बाजार में मंडी में होता है, तो उसकी कीमत एक दाने के बराबर है, ठीक है। लेकिन जब कोई आत्मा उस दाने को भगवान के यज्ञ में अर्पित कर देती है तो भगवान एक के बदले कितना देता है? पदम गुणा। तो पदम गुणा कितना होता है हम में से किसी को मालूम है? काउंटिंग ही नहीं आती पदम गुणा कितना होता है। तो एक दाने का पदम गुणा क्या वो मोहर के बराबर नहीं हो गया? मतलब देने वाले का तो पदम गुणा जमा हो गया, लेकिन जिसने उस दाने को व्यर्थ गवाया उसके भाग्य में से पदम गुणा कट गए। तो एक दाने का पदम गुणा एक मोहर क्या कई मोहरों के बराबर हो जाता होगा। इसलिए, और केवल दाने की बात नहीं है, देखो एक कन्या जब लौकिक जीवन में है तो एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, चलो बड़ी हुई तो किसी की माँ बन गई, लेकिन वही जब यज्ञ में समर्पित हो जाती है तो कितनी अमूल्य हो गई, देवी है, पूजनीय है, ब्रह्मा मुखवंशावली है, वरदानी है। तो यज्ञ में आकर के छोटी से छोटी चीज भी अमूल्य हो जाती है। बाजार में होती है तो वही चीज बाजार भाव की है, यज्ञ में आ गई तो अमूल्य हो गई। और इसी तरह से मान लीजिए हमारे घर में दो बच्चे, एक माँ को दो बच्चे, एक बच्चा अभी 9-10 महीने का है और हाथ थोड़ा टिका करके चलना सीखा है। अब माँ ने आंगन में एक घी का डब्बा रखा हुआ था, भाई धूप पड़ेगी तो ये पिघल जाएगा, और उस 9 महीने के बच्चे ने आंगन में चलते चलते उसको हाथ मारा और सारा घी फर्श पे गिर गया। तो माँ क्या करेगी, बच्चे को मारेगी? 9 महीने के बच्चे को मारेगी क्या? गुस्सा करेगी क्या? क्या बोलेगी? बोलेगी मैं ही ना समझ थी, मेरे को ये डब्बा यहाँ रखना नहीं चाहिए था, मेरे को पता तो था ये बच्चा आंगन में घूमता है। मतलब वो खुद को दोष देगी, बच्चे को नहीं देगी। अच्छा मान लो उसका एक बड़ा बच्चा है 6 साल का 8 साल का, वो किचन में गया और एक बाल्टी में दूध था, उसने हाथ मारा और सारा दूध नीचे गिर गया। अब क्या करेगी? डांट लगाएगी? लगाएगी, माताएं बैठी हुई तो हैं, लगाएगी ना। तो दोनों ही उसके बच्चे हैं, एक को तो उसने उठा करके बहुत प्यार किया, घी गिरा दिया, और एक ने तो दूध ही गिराया था, उसको उसने आंख दिखाई, डांट भी लगाई, एक हाथ थप्पड़ भी लगाया होगा, तू ध्यान से काम नहीं करता, किचन में कितनी चीजें पड़ी हैं, तेरे को चीजें तोड़ने फोड़ने की आदत पड़ गई है, क्यों? तो जैसे इन दोनों बच्चों में अंतर है ना, ऐसे ही ज्ञानी बच्चों में और अज्ञानी बच्चों में अंतर। ज्ञानी बच्चा अगर क्रोध करे तो 100 गुना दंड, अज्ञानी ने अगर क्रोध किया तो 1 गुना तो मिलेगा पर 100 गुना नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा कहेगा उसको तो अभी ज्ञान ही नहीं है कि क्रोध खराब चीज है, और तुमको कितने दिन हो गया समझाते कि क्रोध खराब चीज है और फिर भी कर लिया। तो कर्मों की गति गुहे हो गई ना, कहते भगवान को भी 2 आंखें हैं, किसी को 1 आंख से देखता है, किसी को 2 आंख से देखता है। लेकिन संगम युग में अगर प्राप्ति पदम गुणा है तो संगम युग में लोस भी पदम गुणा है। 2022 में मम्मा की एक मुरली आई थी जनवरी में, जिसमें मम्मा ने कहा था कि दुनिया के लोगों से अगर कोई पूछे ना कि भगवान क्या करता है तो वो एक बात तुरंत बोलते हैं कि भगवान पापों की सजा देता है। सबकी बुद्धि में, भले कोई भगवान की भक्ति करता है नहीं करता है, लेकिन ये बात सब जानते हैं। तो मम्मा ने कहा कि संसार में भगवान का ऐसा रूप प्रचलित है कि वो पापों की सजा देता है, मतलब मारता है, पीटता है, लेकिन दुनिया के लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि वो पापों की सजा देने से पहले प्यार का सागर है। रहम का सागर है, दया का सागर है। पहले वो अपना प्यार दया रहम का सागर उलेंडता है, और उसके बाद जब वो देखता है कि ये सब करने के बाद भी ये नहीं बदले, तब उसका लास्ट हथियार है सजा। लेकिन दुनिया के मेजॉरिटी लोग बाबा की अगर मुरली को याद करें तो अष्ट रत्नों को बिल्कुल सजा नहीं मिलती, 108 को थोड़ी सी नाम मात्र, जैसे आंख थोड़ी बाबा ने दिखाई मुरली में जैसे आया है इतना, और उसके बाद बाकी जितनी भी आत्माएं हैं सबको सजा मिलती। तो सजा ना खाने वाली आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं, और सजा खा करके फिर वो घर जाती हैं, उसके बाद वो रंगमंच पे रोल प्ले करने आती हैं, तो अंतिम अनुभव उनका सजा खाने का होता है, और उस अनुभव को लेके वो धरती पे उतरती हैं, तो उनकी बुद्धि में यही होता है कि भगवान पाप कर्मों की सजा देता है, भगवान प्यार का सागर है, प्यार ही प्यार देता है। ये तो बहुत कम को अनुभव हो पाता है, और इसलिए आज से कुछ साल पहले, समझो 30-40 साल पहले, जब हम लोग बचपन में थे, तो दिवाली के दिनों में कैलेंडर मिला करते थे, सड़कों के ऊपर लोग वो कैलेंडर लेके बैठे रहते थे, कैलेंडर के ऊपर का हेडिंग होता था करनी भरनी, और उसमें चित्र होते थे कि इस व्यक्ति ने चोरी की, तो धर्मराज के जो दूत है ना, यमराज के दूत, वो बड़े बड़े शिंगों वाले, बालों वाले, काले काले, तो उसके हाथ काट रहे हैं, और इसने किसी की हत्या की तो वो आरे से उसको चीर रहे हैं, और इसने मतलब कोई व्यभिचार किया तो उसको आग में जला रही, ये चित्र मिला करती थी, और लोग दिवाली पे इन चित्रों को खरीद के घर में लाते थे और दीवारों पे लगाते थे, और अगली दिवाली तक वो लगे रहते थे, और घर के छोटे बड़े लोग उन चित्रों को देख के, और थोड़े तो सावधान हुआ ही करते थे कि भाई गलत काम नहीं करना, पर आजकल वो बंद हो गई, कहीं नहीं मिलती। तो भगवान परमात्मा हमारा प्यारा शिव बाबा कहता है कि मैं सजा नहीं देता, धर्मराज सजा देता है, और मुरली में ये भी कहता है कि एक सेकंड में इतनी सजा मिलती है, लगता है जन्म जन्म से सजा भुगत रहा, एक सेकंड, अभी हमने चुटकी बजाई और एक सेकंड हो गया इतनी देर में। तो कई भाई बहन कहते हैं एक सेकंड में भला सजा कैसे मिलेगी, कितनी सजा कैसे मिलेगी, और फिर शरीर भी नहीं है, बिना शरीर के आत्मा को सजा कैसे मिलेगी, और वो भी एक सेकंड। लेकिन भगवान ये भी कहता है कि जीवन मुक्ति भी एक सेकंड में मिलती है, तो अगर एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो एक सेकंड में सजा क्यों नहीं मिल सकती। भगवान किसी कार्य में देर नहीं लगाता, ये तो आदमी के काम होते हैं जो बरसों लटके रहते हैं, वो तो 100 साल में आकर के 850 करोड़ आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू कर देता है सेकंड में, उनको मनुष्य से देवता भी बना देता है, हिसाब किताब चुकतू भी कर देता है। यहाँ अगर 850 करोड़ का हिसाब किताब चुकतू करना हो तो कितना बड़ा सिस्टम चाहिए, भारत सरकार इनकम टैक्स लेती है, कितने ऑफिसर हैं, कितने ऑफिस हैं, कितने साधन हैं, कितना खर्चा है केवल इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन भगवान तो करोड़ों आत्माओं का हिसाब चुटकियों में चुकतू कर देता है। तो इसलिए सेकंड में ही जीवन मुक्ति है, सेकंड में ही सजा है। अब हम पहले ये देखेंगे कि सेकंड में जीवन मुक्ति की अनुभूति कैसे हुई, फिर हमें समझ में आएगा कि सेकंड में हिसाब किताब कैसे चुकता होता है। जब बाबा कराची में, पहले सिंध हैदराबाद में थे, और प्यारे शिव बाबा ने उनके तन में पधरामनी की और बाबा को साक्षात्कार कराए, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार कराया, अपना परिचय दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो उस पल सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को जीवन मुक्ति मिली। कितनी देर में? वो कोई बहुत लंबा पीरियड थोड़े था। बाबा आए, बैठे, ब्रजिंद्रा दादी ने साक्षी होके देखा, शिव बाबा तन में आए, साक्षात्कार कराया, अनुभव कराया, और फिर बाबा उठे तो नए बाबा उठे। बैठे थे तो पुराने वाले बाबा थे, लेकिन जब उठे तो एक नए बाबा उठे, जिनको ये संकल्प मिल गया था कि मुझे राधा कृष्ण की दुनिया बनानी है, देवी देवताओं की दुनिया बनानी है। कैसे बनाऊंगा ये प्रश्न तो था, लेकिन इतना निश्चय हो गया था कि मुझे ये कार्य करना है। और फिर जैसे ही बाबा अपने आंगन में आए तो बाबा के परिवार के लोग जो वेट कर रहे थे कि देखें बाबा अंदर कमरे में क्या करने गए थे, तो जैसे ही आंगन में आए और जिसने भी बाबा की नजरों से नजरें मिलाई, उन सबको बैकुंठ का साक्षात्कार हो गया। कुछ घर के लोग थे, कुछ पड़ोस के थे, बाल बच्चे छोटे, तो वो जो साक्षात्कार हुआ तो उनको भी अनुभव हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है। तो बाबा ने पहले खुद जीवन मुक्ति का अनुभव किया और फिर नेत्रों के द्वारा जो उस समय मौजूद थे उनको भी एक तरह से जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया। उन लोगों ने जो साक्षात्कार किया वो भूले नहीं, और उस साक्षात्कार के अनुभव के साथ वो शिव बाबा के और नजदीक आते गए। जीवन मुक्ति तो सेकंड में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद टाइम लगता है अपने हिसाब किताब चुकतू करने। और उसके बाद आप देखिए सिंध हैदराबाद की कितनी आत्माएं बाबा के सम्मुख आई, मम्मा भी आई, दादियां भी आई। क्या इन लोगों ने लंबा लंबा कोर्स किया था? केवल दृष्टि ली और दृष्टि से इतना सुख मिला कि यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो यही है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कितनों को मिली? सैकड़ों भाई बहनों को मिली। अब जीवन मुक्ति तो सेकंड में मिल जाती है, उसके बाद अपनी अवस्था जमाना, अपने भीतर झांकना। जीवन मुक्ति की अनुभूति होती है उसी के बाद तो हम पुरुषार्थ करते। अगर वो ही अनुभव ना हो तो भला आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके बाद पुरुषार्थ चालू हुआ। 400 भाई बहनों ने हैदराबाद और कराची में बहुत अच्छे अनुभव किए, बहुत आनंद का जीवन, अतीन्द्रिय सुख का जीवन जिया, ईश्वरीय मोजों का जीवन जिया। और उसके बाद बाबा यहाँ शिफ्ट हुए पहाड़ पे, और जब यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ से फिर हमारी दादियों की सेवा का पार्ट शुरू हुआ। वहां तो मम्मा बाबा ने ज्यादा सेवा की, लेकिन तपस्या के बाद जब सारे तैयार हो गए तो ये भी जीवन मुक्ति सेकंड में देने योग्य बन गए इतनी तपस्या के बाद। तो फिर हमारी दादियां भारत के कोने कोने में गई, तो ये जहां ज्ञान सुनाती थी तो सभा में इनके माध्यम से कईयों को तो साक्षात्कार होता था, और जिनको साक्षात्कार नहीं होता था तो इनकी वाणी से सत्य का तुरंत आभास हो जाता था कि वही सत्य ज्ञान है। वो कल्प पहले की स्मृति जाग जाती थी, और उस स्मृति के आधार पे वो फिर बाबा पे कुर्बान जाते थे। तो शुरू शुरू में कितनी आत्माएं केवल एक शब्द से, केवल एक दृष्टि से, केवल एक झलक मात्र से बाबा के बच्चे बने। जीवन मुक्ति मिलने में कितना टाइम लगा, और उसके बाद जब कुछ आत्माएं ऐसी होती थी निश्चय संशय निश्चय संशय, मान लो उसके बीच में झूल रही और आ गई आभू में, कुछ तो निश्चय बुद्धि होती थी, एकाध ऐसी भी होती थी। तो यहां आने के बाद किसी को बाबा के ललाट से लाइट का अनुभव होता था, किसी को बाबा की वाणी से और बाबा की गोद से, तो सबको ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता था। वो मिनट भर बाबा की गोद में जाते थे और उनको लगता था कि ऐसा सुख तो कहीं मिल ही नहीं सकता, और इस सुख को हम अपने जीवन में सदा बना के रखेंगे। हम बाबा को नहीं छोड़ सकते, हम बाबा को नहीं भूल सकते, हम बाबा से दूर नहीं जा सकते। तो वो गोद का अनुभव कितनी देर का होता था, वो भी ऐसे ही होता था, और वो ऐसी छाप लगती थी कि आत्मा चलते फिरते उठते बैठते वही अनुभव करती रहती थी कि क्या गोद थी बाबा की, ऐसा सुख तो आज तक नहीं मिला। तो सुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव भी सेकंड का ही होता है, लेकिन बाद में वो अनुभूति मन में रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, और हम बार बार उसको अनुभव करते जाते हैं। वो हमारा एक भीतर का खजाना बन जाता है। जब चाहो खजाने को अनुभव करो, जब चाहो सुख को अनुभव करो, पर जो घटना घटी वो तो सेकंड, आधा मिनट, मिनट, इतनी देर की तो थी। तो जब प्रेम सेकंड में मिल सकता है, और वो प्रेम कितना लंबा चला, मान लो किसी को 55 में बाबा की गोद मिली और वो आज भी है, बुजुर्ग तो हो गया होगा, लेकिन जब वो सुनाने लगता है ना कि मैं बाबा की गोद में कैसे गया, मम्मा की गोद में कैसे गया, तो वो ऐसे ही सुनाता है कि जैसे वो अभी भी गोद में ही है। और जो सुनने वाला सुनता है उसको भी लगता है कि केवल यही नहीं है, मैं भी साथ में गोद में हूं। तो वो अभी तक नहीं भूले, कितने साल बीत गए। तो जब प्रेम का अनुभव हम नहीं भूलते, तो जो सजा मिलेगी उसका अनुभव भी नहीं भूलेंगे। मुझे ऐसी मार पड़ी, वो भी तो याद रहेगी ना, प्यार भी याद रहता है, मार भी याद रहती। तो भले सजा सेकंड की होगी, लेकिन याद लंबी चलेगी। तो ब्राह्मण जीवन में किस किस कर्म की क्या क्या सजा मिलती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर प्यारे बाबा ने एक मुरली चलाई थी 10 दिसंबर 1984। ये मुरली तब चली थी जब 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। आप में जो पुराने भाई बहन है उनको पता है, अचानक सुबह सुबह एक कंपनी थी भोपाल में, उसकी जहरीली गैस लीक हो गई थी, और वहां के रहवासी लोगों को सुबह सुबह दम घुटने लगा था, कईयों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और कई दम घुटने के कारण बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। हमारी भी एक सेंटर पे 2 बहनें थी, अमृत वेले मुरली सुनाने की तैयारी कर रही थी, सुबह 6 बजे की घटना है ये। और जब दम घुटने लगा तो बाबा को बोला कि बाबा क्या करें, तो बाबा ने टचिंग दी थी कि रजाई ओढ़ के सो जाओ। जैसे स्मेल आती है, बदबू आती है, तो नाक के आगे रुमाल लगा लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन तो आती रहती है लेकिन बदबू नहीं आती। तो जब वो रजाई ओढ़ के सो गई तो ऑक्सीजन तो मिलती रही, लेकिन वो जो जहरीली गैस थी उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रही। उसके बाद वो मधुबन भी आई थी, और यहाँ ओम शांति भवन में, उन दिनों बाबा ओम शांति भवन में आते थे, तो उन्होंने अपना अनुभव भी सुनाया था। और ये मुरली जब 10 तारीख की चली, तब किसी बच्चे ने बाबा से सवाल पूछा था कि बाबा एक साथ इतनी अकाल मृत्यु क्यों होती है? तब बाबा ने उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर उस मुरली में दिया है। वो पूरी मुरली ही इसी बात पे आधारित है कि ब्राह्मणों के कर्मों की गति क्या है और लौकिक दुनिया के लोगों के कर्मों की गति क्या है। तो पहले हम लौकिक लोगों के कर्म गति की चर्चा कर लेते हैं। बाबा ने उसमें ये कहा था कि चूंकि अभी कल्प का अंत हो रहा है और सब आत्माओं के जो बचे हुए हिसाब किताब है वो तीव्र गति से चुकतु हो रही है। जब हमने द्वापर युग में पाप कर्म करने शुरू किए तो उस समय तो आगे के काफी जन्म बाकी थे, तो एक जन्म में पाप कर्म शुरू किए वो चुकतु नहीं हुए तो अगले जन्म पेंडिंग हो गए। जैसे उधार चलती रहती है, पिछले महीने पूरी नहीं चुकाई, 100 रुपया बच गया तो अगले महीने चला गया, अगले महीने 200 की उधार रह गई, फिर वो अगले महीने 300 हो गया। तो ऐसे अक्यूमुलेट होते 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 इस अंतिम जन्म में एक तो पहाड़ जितने हिसाब किताब हो गए और उसके आगे और जन्म है नहीं कि अपन आगे खिसका दें कि चलो भाई यहाँ के बच्चे वे अगले जन्म में खिसका देंगे, वो अब मार्जिन नहीं। तो ये अंतिम जन्म की आयु किसी की जितनी भी है, कोई की 50-60 है, कलयुग में तो वैसे ही आयु छोटी होती है, तो उस छोटी आयु में ही व्यक्ति को सारे हिसाब चुकतु करने। तो आप देखेंगे कि लौकिक दुनिया में एक व्यक्ति कभी आपको मिलेगा तो वो इस प्रकार की बातें आपको सुनाता हुआ मिलेगा कि जी क्या करूं, धंधे में मंदी आ गई, घर का खर्चा नहीं चलता है, लड़का इतना व्यसनी है कहीं पैसा रख दो लेके भाग जाता है, अचानक पत्नी बीमार हो गई, अब क्या करूं, घर चलाऊं कि बच्चे को संभालूं कि पत्नी की दवा दारू करूं। तो हमको लगता है कि इस एक आदमी पे कितनी मुसीबतें हैं बेचारे पे, पत्नी बीमार, बच्चा भी सहयोग नहीं देता, धंधा भी नहीं चल रहा, तो एक साथ तीन परिस्थितियां वार कर रही। क्यों? क्योंकि वो अक्यूमुलेशन इतना ज्यादा है अनेक जन्मों का जो इकट्ठा हो गया और इस अंतिम जन्म में चुकतु होना है। कई लोग आपको ये कहते सुनेंगे, शरीर इतना मतलब बीमार रहता है, गोलियां खाता रहता हूं, घर में कोई सेवा नहीं करता है, घर के लोग उल्टा ये सोचते हैं कि ये जल्दी जाए, कभी कभी तो मैं उनकी बातें भी सुन लेता हूं तो बहुत दुखी होता हूं, भाई इसने इतना धन कमाया और घर में इसका धन कमाया हुआ और लोग देखो इसको पूछ नहीं रही बल्कि इसके मरने की कामना कर रही, कैसे लोग हैं, कैसे पत्थर दिल लोग हैं, ऐसी बातें भी हम सुनते। तो ऐसा कड़ा हिसाब किताब क्यों है भाई? वो अक्यूमुलेशन है, वो घर के लोग वही हैं जिनके साथ हिसाब किताब था, घर के लोग कौन आती हैं, कौन बन के आती है? कहती हैं जो मित्र संबंधी हैं वो कर्मजन्य, हमने जो कर्म किए उसके हिसाब से हमें मित्र संबंधी मिल गए, तो पिछला कर्म उन मित्र संबंधियों के माध्यम से चुकतु हो रहा है। तो हिसाब किताब चुकतु करने के बाबा ने कहा दो तरीके सबसे अधिक प्रभावशाली है, एक जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु। जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, इससे हिसाब किताब तीव्र गति से चुकतु होती, क्योंकि जिसके कड़े हिसाब किताब है उसको लंबी आयु नहीं मिलती। जन्म भी कष्टकारी है, कलयुग में मृत्यु भी कष्टकारी है। तो जो हिसाब किताब चुकतु होते हैं वो मृत्यु रूपी दुख से और जन्म रूपी दुख से चुकतु होती। अब जिसकी आयु 100 साल होगी वो तो 100 साल में एक जन्म और एक मृत्यु देखेगा, लेकिन जिसकी आयु मान लो है ही 2 साल, तो वो 2 साल में जन्मेगा, फिर शरीर छोड़ेगा, फिर जन्मेगा, फिर शरीर छोड़ेगा, मतलब एक शरीर की आयु 2 ही साल है, तो कितनी बार वो जन्म मरण के चक्कर में से गुजरेगा। ये जो 42 जन्म है ये तो एवरेज है, कलयुग के कितने जन्म है हमारी 42, ये एवरेज है, लेकिन हरेक का 42 नहीं है। जिस आत्मा ने बहुत पाप किए उसके 42 से बहुत अधिक हो सकती, क्योंकि जब तक कलयुग का पीरियड है वो शॉर्ट टाइम में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर शॉर्ट टाइम में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, शॉर्ट टाइम में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग में अच्छी आत्माएं भी हैं, तो उनकी आयु 100 साल भी हो सकती, होती है कि नहीं होती है? कईयों की 104, कईयों की 105 अभी भी मिल जाएंगे, और कईयों की 6 महीना, कईयों की 3 महीना, कईयों का 1 सेकंड जन्मा और गया। तो ये 42 जो जन्म है ये हरेक आत्मा की 42 नहीं, कईयों के अधिक भी है, ये तो एवरेज निकालते हैं भी, एवरेज 42 जन्म। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवादी है, अपन समाचार सुनते हैं कि भाई उसने गोला फेंका और पूरी बस उड़ गई। अब बस में कितने लोग थे? 50 लोग थे, और जब बम फेंकते हैं तो मृत्यु भी अब नॉर्मल होती है, मतलब शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। अब मान लो वो व्यक्ति पकड़ में आ गया, तो जो भारत की दंड संहिता है, भारतीय पिनल कोड है, वो ये कहती है कि एक हत्या के बदले में एक फांसी। तो पकड़ में आ भी गया, मुकदमा चला, और गवर्नमेंट ने, भारत की दंड संहिता ने उसको फांसी की सजा सुना दी। उसने मारा कितनों को था? 50 को। अब फांसी की सजा तो एक हत्या के बदले एक फांसी, बाकी 49 का क्या होगा? पूरी सजा तो नहीं मिली ना, लेकिन जीवन ही उसका एक है गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट तो एक ही फांसी दे सकती है। अब वो आगे कहां जन्मा? गवर्नमेंट थोड़े पीछा करेगी कि फिर पकड़ो और फिर दूसरे की फांसी दो। ये लौकिक के हाथ में नहीं है। फिर ये केस किसके हाथ में चला जाता है? फिर ये ऊपर वाली गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तो अब इसका समाधान कैसे होगा कि वो आत्मा जन्म तो लेगी लेकिन उसको आयु नहीं मिलेगी। जन्म लेते ही वो फिर देह छोड़ेगी और फिर अगली माँ के यहाँ जन्म लेगी, फिर जन्म लेगी, देह छोड़ेगी, फिर अगली माँ के यहाँ लेगी, तो उसको लंबी आयु नहीं मिलेगी। क्योंकि जो 50 लोग गए और एक के पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, तो 50 × 2200, 5000 लोगों को तो वो आंसू दे गए, और वो 5000 लोग सोते उठते बैठते, क्योंकि वो ज्ञान वाले तो हैं नहीं जो माफ कर दें, तो उनके भीतर से क्या निकल रही है? बद्दुआ। तो वो आत्मा जहां भी है उसका पीछा कर रही है वो बद्दुआ, तो उसको आयु मिलेगी नहीं। और इस प्रकार वो अपने उन 50 हत्याओं का फल भोगेगा। किसी को भी नहीं पता, हमारे में से जिस घर में वो बच्चा आता है उनको भी नहीं पता, बच्चे ने जन्मते ही आंख बंद कर ली तो घर के लोग बहुत दुखी होते हैं कि हाँ ये बच्चा आया था चला गया, भगवान तूने हमारा बच्चा ले लिया। अरे भाई ये तुम्हारा बच्चा बन के थोड़ी आया, ये तो अपराधी बन के सजा भोगने आया था, सजा भोग के चला गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई उस माँ ने क्या पाप किया? तो अगर कोई पाप कर्म करता है, जैसे हमने कहा बम फेंकता है या और कोई भी इस प्रकार का काम करता है, तो वो अकेला थोड़े होता है, उसके भी तो पीछे कुनबा होता है ना, उसके भी तो सहयोगी होते हैं ना, कोई उसको खाना बना के देता है, कोई उसके कपड़े धोता है, कोई उसको पुलिस आए तो छिपा देता है, कोई उसको बम गोले खरीदने के लिए धन देता है, पाप कर्म के लिए भी तो धन चाहिए ना। तो इस प्रकार के पाप कर्मों में अगर सहयोग दिया होता है तो वही फिर उसको भुगताने के निमित्त भी बनते। ये जो मां बनी, ये पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी पाप कर्म में सहयोगी थी, तो वो भुगताने की भी निमित्त बनेगी, भाई इसके गर्भ में आके भुगत। फिर आगे एक और मां मिली, वो भी कहीं ना कहीं सहयोगी थी, क्योंकि जैसे आज हम एक मेला करते हैं तो हमारे हजारों भाई बहन उस मेले में सहयोगी बनते हैं। किसी का धन लगता है, किसी का तन लगता है, और इसी तरह से कहीं पे कोई दंगा होता है, फसाद होता है, तो उसमें भी हजारों का सहयोग होता है। बुराई में भी हजारों सहयोगी बनते, फिर उसका फल मिलता है तो वो हजारों में डिवाइड होता है। हमारे यहाँ पुण्य बनता है तो वो भी मेला जिन्होंने हजारों ने किया वो पुण्य भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से कलयुग में जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, और इकट्ठी इकट्ठी। किसी ने एक बार कहा था कि जैसे मान लीजिए एक कानून बन रहा है कि भाई गो हत्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मान लो 50 लोग मिलकर के एक कानून बनाते हैं कि गो हत्या होनी चाहिए। अब 50ों ने एक साथ साइन की एक हिंसा वाले कानून पे, तो इसका फल ये हो सकता है कि ये 50ों एक साथ जाएं। कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो एक साथ 50 लोग गए, कश्ती पानी में डूब गई, एक साथ 50 लोग गए। जरूरी नहीं उसी जन्म में, अगले जन्म में अलग अलग जगह जन्मे, लेकिन कश्ती में एक में ही सवार हो गए और एक साथ गए। तो एक साथ जाने का ये भी कारण होता है कि उन सबने एक साथ किसी पाप कर्म में हाथ डाला था, क्योंकि हिसाब किताब तुरंत थोड़े चुकते होते हैं। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म के बाद सुविधा के अनुसार, नियति की सुविधा के अनुसार चुकते होते। तो ये बाबा ने बोला था जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, इस तरीके से हिसाब किताब चुकते होते। फिर बाबा ने उसी मुरली में आगे सुनाया था कि ब्राह्मण आत्माओं के जो हिसाब किताब है वो तीन तरीकों से चुकते होते हैं। ये तो हमने बात की उन आत्माओं की जो अभी ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बनी, अभी हम बात कर रहे हैं उनकी जो ब्रह्मा मुख वंशावली बन गई। तो उसमें बाबा ने तीन तरीकों का वर्णन किया है। पहला तरीका शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा हिसाब किताब चुकते होते, उसमें शरीर की बीमारी और मानसिक समस्याएं, बाबा ने इन दोनों का वर्णन किया। दूसरा तरीका शरीर के संबंध संपर्क के द्वारा, और तीसरा तरीका प्रकृति के द्वारा। अब हम एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, हम शरीर यानी कि शारीरिक बीमारी को ले लेते हैं। बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि कोई कर्म भोग आए तो भी खुश रहना है, ये पुरानी जुत्ती है। खुश हो जाओ कि ये पुरानी जुत्ती जाएगी तो बढ़िया शरीर मिलेगा। और बाबा ने ये भी कहा था कि उससे पिछले दिन वाली मुरली में कहा था कि योग बल से हिसाब तो चुकते होते हैं और निरोगी काया मिलती है, लेकिन अगले जन्म में, क्योंकि ये काया तो जैसी है वैसी ही है। हाँ, कुछ रिबेट तो मिल जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ही निरोगी बन जाएगी, क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है। और जो हम भोजन पानी ले रही है वो भी तो तमो प्रधान है। तो हर एक को शारीरिक बीमारी का पेपर आता है, जिसको शरीर है उसको शारीरिक बीमारी का पेपर आता है। अपन सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, हमारे अति प्रिय ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया, जिसको हम कहते हैं सेकंड गॉड, मतलब उससे ऊंची कोई आत्मा ही नहीं है साकार सृष्टि। लेकिन साकार मुरली में हम सुनते हैं कि प्यारे बाबा को खांसी थी, और बाबा कभी कभी अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि मैं बाबा से रूरियान करता हूँ कि बाबा मेरी खांसी ले लो तो मैं आपकी सेवा और अच्छे से करूंगा। तो बाबा कहते हैं ये तो आपका कर्म भोग है, आपको ही भुगतना है। सबने सुनी है ना ये पॉइंट। तो जो शिव बाबा के इतना नजदीक है उसको भी रिबेट नहीं है, उसको भी कर्म भोग आया। वो अलग बात है कि बाबा का योग बल इतना था कि वो कभी खांसी के अधीन नहीं हुए, खांसी अपना काम करती थी और बाबा अपना काम करते थे। उसके बाद हमारी अति प्रिय मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा, तो मम्मा भी बीमार थी, आप सबने मम्मा की कहानी सबने सुनी। लेकिन भले बीमारी कितनी भी कड़ी थी, कोई ये नहीं कह सकता था कि मम्मा बीमार है। डॉक्टर आता था, पूछता था बीमार कौन है, तो जब मम्मा की तरफ इशारा करते थे तो कहते थे तो मेरे से भी ज्यादा स्वस्थ है। कर्म भोग तो आया, अब भगवान की इसमें मदद क्या है कि बाबा ने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई है, बाबा ने हमें जो अशरीरी बनने का अभ्यास सिखाया, अगर हम उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो कर्म भोग आएगा लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। शरीर कर्म भोग को चुकतू करेगा और आत्मा योग बल से अपनी कमाई जमा करती रहेगी। भगवान का बनने का फायदा क्या? ये फायदा है, कर्म भोगी ना आए ये नहीं हो सकता। वो कम हो जाएगा लेकिन आएगा, आएगा तो आत्मा के ऊपर हावी नहीं होगा, आएगा शरीर में। आत्मा डिटैच है, देह से बिल्कुल डिटैच है, साक्षी होके देख रही है। उसको ना दर्द की अनुभूति है, ना वो चीखती है, ना वो रोती है, ना वो नेगेटिव सोचती है, वो अपने कमाई में लगी हुई है, उसकी कमाई जमा हो रही। उसके बाद बड़ी दीदी को देखिए, बड़ी दीदी को भी तकलीफ हुई, कितनी मुरलियां हैं उस समय की, बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई और बॉम्बे में दीदी का इलाज चला। एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्ची भोगना है या नई दुनिया की योजना है, मतलब वो बिस्तर पे पड़े हैं, भोगना नहीं है, वो नई दुनिया की योजना बना रहे। कितनी महान, कितनी ऊंची उनकी सोच है। शरीर बेशक आराम कर रहा है लेकिन मन प्लानिंग कर रहा है, मन विश्व सेवा में। और दीदी एक मास तक ऐसी थी, मतलब जिसे बाहर के लोग तो यही देखते थे कि कोमा में। बाद में बाबा ने संदेश में भेजा कि दीदी वतन में थी, दीदी को इच्छा थी कि मैं वतन का अनुभव तो करूं, वतन में क्या होता है। तो बाबा ने बच्ची को एक मास वतन में रख करके और सब अनुभव कराया कि वहां क्या होता है। तो कर्म भोग अपना काम कर रहा है और आत्मा देखो कहाँ की सैर कर रही है, क्या अनुभव कर रही है, बाबा का राइट हैंड बन के क्या सेवा कर रही है। उसके बाद और आगे आइए, हमारी अति प्रिय दादी प्रकाशमणि, और उस दादी से पहले हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी 2001 काफी बीमार रहे, लेकिन अंतिम श्वास तक उनका संकल्प क्या था, वो एक ही बात सोचते थे कि ये वाली किताब छप जाए, ये वाली भी छप जाए, ये वाली भी छप जाए, और जो किताब छप जाती थी तो कहते थे अच्छा भाई ये काम भी पूरा हो गया, अच्छा ये भी पूरा हो गया, अच्छा इसको जल्दी छपवाओ, इसको जल्दी छपवाओ। तो किताबें छपवाना, किताबें या मतलब साहित्य का काम पूरा करना, उनको एक ही संकल्प था, ये नहीं था कि बीमार हूं कि कष्ट है कि तकलीफ है, नाम भी नहीं। मिलते थे तो भी भाई बहनों को बहुत अच्छे डायरेक्शन देते थे, बहुत अच्छी उनकी तकलीफें सुनते थे। जब भी दिल्ली से यहाँ शांतिवन या ऊपर जाते थे तो भाई बहन जो भी अपनी समस्याएं लेके जाते थे, उनका समाधान करते थे। शरीर तकलीफ में था लेकिन मन तकलीफ में नहीं था। अंतिम श्वास तक सेवा की, अंतिम घड़ी तक साहित्य की सेवा की। गुलजार दादी संदेश लेके गई थी बाबा के पास कि ये तो आपका अनन्य बच्चा है और फिर इनको तकलीफ क्यों है, मतलब बीमारी क्यों आई। तब बाबा ने कहा था कि इस बच्चे ने कहा था कि मुझे ऊपर सजाएं नहीं भोगनी, मेरा जो भी हिसाब किताब है वो नीचे ही चुप हो जाए, तो इसलिए ये बच्चे का सब हिसाब नीचे चुप हो रहा है। अब कई भाई बहनों को ऐसे लगता है कि ऊपर सजा मिलती है मिलती रहेगी, नीचे नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाली ज्यादा कड़ी है, नीचे वाली बहुत सरल है। नीचे वाली सरल क्यों है? नीचे वाली इसलिए सरल है कि नीचे जब हम ब्राह्मण बच्चों को कोई भी तकलीफ आती है तो ब्राह्मण परिवार और साथ में हमारा प्यारा बाबा दोनों हमारे मददगार बनते हैं। मान लो एक ब्राह्मण बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में है तो कितने ब्राह्मण देखने जाते हैं, दादियां भी, मधुबन में होता है तो दादियां भी देखने जाती हैं। कोई फ्रूट लेके आता है, कोई कहता है ये दवा ले लो, कोई कहता है अच्छा अगर तुम्हें पैसे की तकलीफ है तो चिंता मत करना मैं तुम्हारा बिल पेमेंट कर दूंगा। ऐसे दिलदार भी बाबा के बच्चे। अच्छा तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं पूछते तो हम सुबह से हम तुम्हारी सेवा करने आएंगे, ऐसे भी बाबा के दयालु बच्चे। तो ब्राह्मण बच्चों को परिवार की मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा किसी को अचानक धन का घाटा लग गया, पैसा नहीं है तो दूसरा कोई कह देता है देख तू मधुबन का प्रोग्राम मिस मत करो, तुम्हारी टिकट का पैसा मैं दे दूंगा। करते हैं कि नहीं करते? तो धन की तकलीफ आई, तन की तकलीफ आई या और कोई भी पारिवारिक तकलीफ आई तो एक ब्राह्मण दूसरे के लिए खड़ा हो जाता है। टीचर बहन खड़ी हो जाती है, टीचर बहन मदद करती है, मधुबन भी बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। और बाबा तो है ही, जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे डायमंड हॉल में तो जो बीमार बच्चे होते थे उनको व्हीलचेयर में बाबा के सामने ले जाते थे तो बाबा कितनी प्यार से दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, फ्रूट देते थे और कुछ ना कुछ उस आत्मा के लिए वरदानी बोल भी बोलते थे। तो बाबा कितना उसकी हेल्प करते थे। और बाबा ये भी कहते हैं कि योग लगाओ तो बीमारी का दर्द महसूस नहीं होगा, बाबा से किरणें लो योग में। तो मदद मिली कि नहीं मिली? लेकिन जब ऊपर सजा भोगेंगे तो कौन सा ब्राह्मण बच्चा आएगा कि इसको मत मारो? कोई आएगा या बाबा आएगा? सजा कौन दे रहा है? ऊपर कोई मदद के लिए आएगा? न बाबा न कोई बाबा का बच्चा, कोई नहीं होगा। उस समय हम केवल अकेले होंगे और उस समय ये भी नहीं कह सकेंगे कि बाबा बचाओ, क्योंकि पिटाई कौन कर रहा है। और उस समय ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये मैंने नहीं किया, क्योंकि वीडियो सामने आएगा, ये देखो पूरा का पूरा उसमें हम दिखेंगे कि ये मैं खड़ा हूं और ये देखो ये मैं ये कर रहा हूं, ये देखो ये मैं ये कर रहा हूं। तो वहां चुपचाप सरेंडर हो जाएंगे। यहां भी जब कोई सच्ची गवाही दे देता है ना कोर्ट में, एकदम प्रूफ दिखा देता है कि देखो इसने ये किया, तो उसके आगे फिर वो आगे बोलती बंद हो जाती है, उसके बाद वो जिरह खत्म हो जाती है, फाइनल फैसला हो जाता है कि प्रूफ मिल गया भाई इसी ने किया। तो जगदीश भाई ने कहा कि मुझे ऊपर नहीं, मेरा हिसाब नीचे चुकतू हो जाना चाहिए। तो हिसाब चुकतू होता रहा लेकिन आत्मा तो सेवा करती रही। उसके बाद हमारी दादी प्रकाशमणि जी, फिर दादी जानकी, तो बीच बीच में भी बीमार होते थे, लास्ट में तो ज्यादा नहीं हुए थे। और फिर हमारी दादी गुलजार, वो भी बॉम्बे में रहे। कई भाई बहन पूछते थे कि दादी गुलजार तो बाबा का रथ, फिर दादी को ऐसा क्यों, बाबा ने हेल्प क्यों नहीं की? ऐसे कईयों के मन में सवाल आता है। लेकिन आप विचार कीजिए कि ये जो हमारा शरीर है ये कौन से तत्वों से बना हुआ है। जैसे आजकल वो कंबल होते हैं ना, उनको रिसाइकल करके फटे कंबलों से अपन नया कंबल बना लेते हैं, ऐसी मशीनें होती हैं। अब एक कंबल है जो सैकड़ों बार रिसाइकल हो चुका है, उसमें कितना दम होगा? तो 84 बार के रिसाइकल्ड तत्वों से हमारा ये अंतिम शरीर बना है। तो तत्वों में कितना दम? नंबर दो, भोजन खाते हैं उसमें कितना दम है, हवा जो लेते हैं, और फिर आयु, 90 तक आयु पहुंच गई। मतलब एक तो तत्व ही कमजोर थे और फिर उनको चलाते चलाते हमने 90 साल उस गाड़ी से काम ले लिया। तो 90 साल की आयु में अगर कोई व्यक्ति को थोड़ा कुछ शरीर में होता है तो वो तो नेचुरल है। अननेचुरल कब है? 20 साल की आयु में हुआ, 15 की आयु में हुआ, चलो 40 में हुआ, ये अननेचुरल। तो जब अंतिम फाइनल टाइम आता है तो शरीर में कुछ ना कुछ सिम्टम्स थोड़े बहुत तो प्रकट होते ही, लेकिन सिम्टम्स प्रकट हुए पर सवाल ये है कि उस आत्मा का अनुभव क्या था। अभी हमने दादी की एक बुक बनाई है, गुलजार दादी के प्रति अनुभवों की बहुत सुंदर बुक है। ऐसे दुर्लभ अनुभव भी हैं जो आप सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी और आपकी अवस्था भी बहुत ऊंची जाएगी। तो उसमें एक नर्स बहन ने अपना अनुभव लिखा है कि दादी 3 साल धरती पर थी ही नहीं, केवल हम जिसे सामने देखते थे वो केवल तत्वों का आवरण था, दादी नहीं थी। दादी को नाश्ता करने के लिए नीचे बुलाना पड़ता था, दादी आ जाओ, दादी आ जाओ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके नीचे बुलाना पड़ता था। और दादी को पूछते थे, दादी नाश्ता कर लिया? तो दादी कहती थी, हाँ कर लिया। कहाँ किया? वतन में किया। क्या खाया? मीठे के साथ परोठा खाया। अच्छा दादी मुरली पढ़ ली? पढ़ ली। कहाँ पढ़ी? वतन में पढ़ी। वहां की मुरली यहां से अलग होती। और ये लोग चाहते थे कि दादी हमारे साथ रहे। अच्छा दादी एक पोएम सुनाऊं, दादी डांस करके सुनाऊं, जो एक कन्याएं थी, नर्स कन्याएं थी, बाबा की बच्चियां। तो दादी इनका दिल रखने के लिए थोड़ी देर देख लेती थी और जैसे ही उनका गीत कविता डांस पूरा हुआ दादी फिर अव्यक्त होकर फिर ऊपर चली। डॉक्टर आते थे, दादी को कहते थे हाथ ऐसे करो, कर लिया, ऐसे करो, कर लिया, ऐसे मुड़ जाओ, मुड़ लिया। शरीर, दादी कहती थी शरीर अपना काम करता है, मैं अपना काम करती। दादी को बिना अनस्थीसिया के चीरा भी लगा और टांके भी लगे, बिना अनस्थीसिया के, इतनी देह से न्यारी अवस्था। तो दादी कहां थी 3 साल? हम कहते हैं दादी बॉम्बे में थी। दादी बॉम्बे में नहीं थी, दादी वतन में थी, बाबा के पास थी। तो बॉम्बे में कौन था? वो दादी का शरीर, अंतिम जन्म का अंतिम शरीर, अंतिम घड़ी में। कपड़ा भी देखो पुराना हुआ, पुराना हुआ, रंग उड़ गया और उसके बाद फट गया, तो कैसी शक्ल होती है अंत में जब कपड़ा फटता है? तो शरीर तो कपड़ा ही है ना। हाँ सतयुग में जब अंतिम घड़ी आएगी तब शरीर वैसा ही होगा जैसा 20 22 50 साल का था, लेकिन ये तो है ही अंतिम जन्म, अंतिम जन्म का भी बिल्कुल अंतिम तपों प्रधान समय। तो शरीर के ऊपर तो तत्वों का इफेक्ट आएगा कोई भी हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि आत्मा उसी अतिंद्रिय आनंद में थी। कई ब्राह्मण बच्चे नए नए ज्ञान में चलते, समझो ज्ञान में चलते 5 साल हुए और बीमारी आ गई और बीमारी में दुखी हो गए मतलब दर्द है, तकलीफ है, तो फिर कहते देखो हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमारी मदद नहीं की। कई उनके परिवार के लोग और अड़ोसी पड़ोसी भी कह देते अरे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम बीमार हो गई। तो फिर उनके मन में और संकल्प आ जाता है, ये ठीक ही तो कहते हैं। 5 साल हो गए मुझे, मैं रोज क्लास करता हूँ, कोई 5 वाला, कोई 10 वाला, कोई 15 वाला, है ना। सवाल ये है कि भाई तुमने मुरली तो रोज सुन ली, आजकल अपन सेंटर पे नहीं तो घर में भी सुन लेते, लेकिन मान लो हमारा 63 जन्मों का उदाहरण समझ लो, हमारे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा था और हमने 5 साल मुरली सुन करके कितना उतारा। अमृत वेला हमारा कितना पावरफुल है, मुरली सुन ली उसको धारण कितना किया, हम कर्मयोगी कितने बने, हमने अपने जीवन से उदाहरण मूर्त बन करके कितनों को प्रभावित किया। 5 साल में हमने कितना योग बल जमा किया। मुरली सुनी वो ठीक है, सवाल ये है कि जीवन धारणा मुहूर्त कितना बना, हमने विक्रम विनाश कितने किए, हमारे पाप कितने कटे, हमारा कर्जा कितना उतरा। 100 करोड़ का कर्जा था और हमने 5 साल में कमाया केवल 1 करोड़ जितना, अभी कितना बचा है, 99 करोड़ बचा। और हमारी आयु इतनी है नहीं कि हम 99 करोड़ तपस्या करके चुकतू कर सके, क्योंकि नियति भी आकलन लगा लेती है 5 साल में इसने 1 करोड़ चुकतू किया तो 99 करोड़ चुकतू करने के लिए तो 99 बाई 5 इतना साल चाहिए, इतनी तो इसकी आयु नहीं, तो क्या किया जाए। तो फिर बीमारी आती है मदद के लिए, कहती है ला मैं तेरा चुकतू करा दूं, मैं तेरी मदद के लिए आई हूं। और हमको लगता है कि ये तो हमारी शत्रु आ गई, अरे वो शत्रु नहीं है, वो जो इतना पहाड़ जितना हिसाब किताब है ना, वो हमारी योग बल से चुकतू नहीं हो पा रहा था, तो वो मदद के लिए आई है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मान लो आपके सिर पे 1 मण वजन हो, 40 किलो को 1 मण बोलते, 1 मण वजन हो और कोई उसमें से आधा पौना उतरवा ले तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। आप तो उसको थैंक्स देंगे, अरे भाई बहुत मैं बोझिल हो गया था, तुमने उतरवा लिया, तुम्हारा थैंक्स। तो बीमारी तो तुम्हारा बोझ उतरवाने आई थी, तो तुमको थैंक्स करना चाहिए, वाह बीमारी वाह तूने मेरा बोझ उतार लिया, कुछ तो मैं योग बल से उतारूंगा और कुछ तुम आ जाओ, कुछ तुम उतरवा लो, जल्दी जल्दी चुकतू हो जाए। पर हम तो उसी से नाराज हो गए, बीमारी तुम आई क्यों, बाबा से भी नाराज हो गए, बाबा आपने हमें बचाया क्यों नहीं, अरे ये तुम्हारी मदद करने आई है, ये तुम्हारा 1 जन्म नहीं है, 84 जन्मों की यात्रा है, कितनों से कर्जा लेके आए हो, वो चुकतू कैसे होगा, आगे पीरियड तो बहुत छोटा है, संगम युग तो थोड़ा सा बचा है। इसलिए बाबा ने कहा जब बीमारी आए तो हाय बीमारी नहीं कहना, वाह उसको खिलाओ पिलाओ प्यार से विदाई दो, वाह वाह बोलो। क्या बोलेंगे, पक्का बीमारी आए तो क्या बोलेंगे, अगर हाय हाय की तो क्या होगा, क्योंकि हमारा योग नहीं लगेगा तो जो कर्जा चुकतू होना था वो नहीं हुआ तो फिर बीमारी डबल होके आएगी। इसलिए वाह बीमारी वाह, अच्छा है तुम आई, तुम मेरी सखी हो, तुम चुकतू कराने आई, जल्दी चुकतू कराओ क्योंकि मुझे संपूर्ण बनना है। तो कोई भी हिसाब किताब हो, शारीरिक हो, धन का हो, संबंध का हो, इनमें अपने को शिकायत नहीं करनी है कि बाबा ने मदद नहीं की, बाबा तो सदा ही मददगार है। मदद लेने की भी तो विधि है ना, हिम्मत का 1 कदम तुम बढ़ाओ 1000 कदम से बाबा मदद करेगा। बाबा ने कहा बच्चे आधा स्लोगन याद कर लेते हैं, बाबा मदद करेगा, पर कब करेगा, जब हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओगे तब मदद करेगा। दूसरा है मानसिक हिसाब किताब। तो मानसिक हिसाब किताब में बाबा ने बताया जिसको कहते हैं किसी में ऊपरी आत्मा की प्रवेशता, इविल सोल की प्रवेशता, किसी का याददाश्त खो जाना या याददाश्त कमजोर हो जाना, बातों को रिपीट करना या मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मन मानसिक रूप से मस्तिष्क में और मन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करना, जिसे लोग कहेंगे पागल हो गया, पागलपन, इविल सोल, याददाश्त कम होना या नष्ट होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो मानसिक तरीके से हिसाब किताब चुकतू कराने आती। उसके बाद शरीर के संबंध और संपर्क, तो आजकल आप देखेंगे लोगों को अधिक प्रॉब्लम शरीर के नजदीकी संबंधों से, दूर वालों से नहीं। कोई आपका संबंधी अमेरिका में बैठा है, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, आपको लंदन में बैठा है उसकी तकलीफ नहीं है, दिल्ली वाले की भी तकलीफ नहीं, जो आपके घर में रह रहे नजदीकी संबंधी, मतलब माँ को माँ बेटे से तकलीफ में है, बेटा माँ से तकलीफ में है, पति पत्नी या जो हम रहते हैं एक घर में, बहू आ गई या बेटी की शादी हो गई, जमाई ऐसा निकला वगैरह वगैरह, इस तरीके से हमारे रही हुए हिसाब किताब चुकतू होते। संबंधी और संपर्क, संपर्क हमारे कई होते हैं, जैसे बिजनेस संपर्क होता है या सोसाइटी में संपर्क होता है, हमें कहीं जाना होता है, सभा में सोसाइटी में लोगों के बीच बैठना होता है, वो हमारे संपर्क होते हैं। तो संपर्क में भी कई बार तकलीफ होती है, संपर्क में किसी ने मोबाइल नंबर ले लिया और फ्रॉड कर दिया, हमारा सारा खाता ही खाली कर लिया, तो ये संपर्क के द्वारा हम धोखा खा गए। बिजनेस में किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, अब हम सड़क पे आ गए अचानक, या ऑफिस में किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी, अब हमारी पेंशन नहीं बन रही है, झूठी कंप्लेन कर दी, हमने 40 साल नौकरी की, पेंशन नहीं बन रही है, अब नौकरी तो पूरी हो गई, खाएंगे क्या। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो तन से कनेक्टेड हो, मन से कनेक्टेड हो, धन से कनेक्टेड हो, किसी ने शरीर के ऊपर वार कर दिया, शरीर का कोई अंग भंग कर दिया, इस प्रकार की घटनाएं, या कोई मित्र संबंधी ऐसा बोलता है कि हमें बहुत मानसिक कष्ट होता है, हम अंदर ही अंदर जैसे तड़फ जाते हैं उसकी बात सुन के, कर कुछ नहीं सकते, रहना भी उन्हीं के साथ है, ये अपन समाचार सुनते रहते हैं, दुनिया में भी हैं, और क्योंकि हम हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं, मतलब भीके नॉन भीके इकट्ठे रहते हैं, तो हिसाब किताब इस तरीके से भी परिवारों में चुकतू होती है, ये दूसरी प्रकार से चुकतू होता है। इसमें भी हम शिकायत करते हैं, बाबा आपने मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया, ऐसी माँ क्यों दी, ऐसा पति क्यों दिया, ऐसा भाई क्यों दिया, मतलब कई बार हम ऐसे बाबा को शिकायत करते। तो वास्तव में जो संबंधी है वो भी कर्मजन्य है, जैसे हमारे पास जो चीज होती है ना उसको हम कहते हैं धनजन्य, धनजन्य का मतलब है पूंजीजन्य, जैसा आपके हाथ में पैसा है वैसी आपको चीज मिल गई। मान लो अपन तीन लोग मोबाइल खरीदने गए दुकान पे, तो दुकानदार पूछता है भाई किस रेंज का मोबाइल दे दूं। अब एक व्यक्ति की जेब में 20,000, कहेगा साहब 20,000 के आसपास का दिखा दो, दूसरे की जेब में 10,000, 10,000 वाला दिखा दो, मेरी जेब में 1,000, मैं कहती हूँ भाई कीपैड वाला कोई पुराना दे दे। उसने मुझे 1,000 वाला क्यों दिया, क्या दुकानदार पार्शियलिटी करता है? दुकानदार ने तो पार्शियलिटी नहीं की, जितनी जेब में पूंजी है वैसी चीज मिल गई, दुकानदार के पास वैरायटी है, आप में जो खरीदने का दम है आप खरीद लो। और मैं 1,000 वाला लेके जाऊंगी ना तो ये भी नहीं कहूंगी कि इसको 20,000 वाला क्यों मिला, मैं संतुष्ट हूं, मुझे पता है मेरी जेब में इतना ही। तो जब आत्मा देह छोड़ के जाती है और अगला जन्म लेना है उसको, ये सेकंड की प्रक्रिया है, तो देह छोड़ने के बाद तो देह वाला जंजाल खत्म हो जाता है, आत्मा को क्लैरिटी हो जाती है कहां जाना है। तो बाबा ने कहा है ना, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। उसको खुद पता है कि मेरी जेब में पूंजी कितनी है और इस हिसाब से मुझे कौन सी चीज को उंगली लगानी, मेरे पुण्य कितने हैं, मेरे पाप कितने। तो आज भी आपको राम जैसा पति मिल सकता है, लेकिन जेब में जब पूंजी नहीं है पुण्य की, तो आत्मा राम वाले जैसे घर की तरफ जाती ही नहीं। मान लो हमारे पास 10,000 है और एक मॉल है जहां लाख से नीचे की कोई चीज ही नहीं, हम जाएंगे क्या उस मॉल में? हमको पता भी हमारे काम का नहीं है वो मॉल, हम तो छोटी परचूनी की दुकान से खरीद लाएंगे 10,000 का माल। तो आत्मा ऑटोमेटिक उसी घर में जाती है जैसी उसकी पुण्य की पूंजी। अब जिसकी पुण्य की पूंजी बहुत अच्छी है उसको राम जैसा पति मिल गया, पुण्य की पूंजी कम है उसको रावण जैसा मिल गया, इसमें भगवान क्या करे? जिसकी पुण्य की पूंजी बहुत है उसे कृष्ण जैसा बेटा मिल गया। आज के जमाने में कृष्ण तो नहीं होता है, लेकिन कई गुणवान बच्चे हैं, बहुत बहुत गुणवान बच्चे कलयुग में भी मिल जाएंगे, स्वर्ण कुमार जैसे बच्चे, और किसी को कंस जैसा बच्चा भी मिल गया। तो ये कर्मजन्य। तो आज के बाद किसको दोष नहीं देना? बाबा को दोष नहीं देना, ये बाबा का दोष नहीं है। हमारी हमने कमाया कम, हमारी मुट्ठी में पूंजी कम थी, और फिर मान लो मुट्ठी में पूंजी आज कम है, तो मैंने 1,000 की पैड वाला मोबाइल ले लिया, पर कल मैंने खूब जी लगा के कमाया, अगले साल हो सकता है मैं 20,000 वाला भी ले लूं। तो बाबा ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा योग बढ़ जाएगा, तुम योगी बन जाओगे, तो तुम्हारे ये जो संबंधी हैं ये भी सुधर जाएंगे। वो कीपैड वाला बढ़िया से रिप्लेस हो जाएगा। यही बच्चा जो दुख देता था ये सुख देना चालू कर देगा, क्योंकि आपकी पूंजी बढ़ गई तो वो भी बदल गए। इसलिए आप अपनी पूंजी बढ़ाओ, मतलब अपना योग बल, अपना पुण्य का बल बढ़ाओ, कंप्लेन नहीं करो, आपका पुण्य का बल बढ़ेगा और सामने वाला का परिवर्तन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया। अब तीसरी चीज बची, वो है प्रकृति। प्रकृति के द्वारा भी हिसाब किताब चुकती होती। प्रकृति मतलब पांचों तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और जो जीव जंतु प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं वो भी प्रकृति ही माने जाते हैं। तो अगर पांचों तत्वों के द्वारा या प्रकृति के जीव जंतुओं के द्वारा हमें कोई तकलीफ मिलती तो वो कहेंगे प्रकृति के माध्यम से हिसाब किताब चुक दो। अब इसमें आप देख लिए पांचों तत्व जल, भाई कहीं का जल पी करके हम बीमार हो गए, जल सूट नहीं हुआ, ऐसा पानी था पिया और डायरिया हो गया या जो भी कुछ हुआ, तो ये प्रकृति का है ना। या जल से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, नदी ने उफान खाया, समुद्र ने उफान खाया। वायु, हवा पानी सूट नहीं किया, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो कई बार वायु भी तकलीफ दे देती है, और वायु भी जब आंधी बन जाती है तो हमारा कई बार आर्थिक नुकसान कर देती है। तत्व आजकल नुकसान ही कर रहे हैं। अग्नि, अग्नि से भी कई बार हमको हिसाब चुकतू करना पड़ता है, हम कहीं जल गए या अग्नि ने कोई चीज जला दी लापरवाही में, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कई तरह की बातें होती। और पृथ्वी, भूकंप तो बड़ा भारी नुकसान करता है, आकाश में पोल्यूशन है, इसलिए पानी भी बरसता है तो वो बूंद इतनी प्योर नहीं है, वो पोल्यूटेड बन के नीचे आती है। तो इन पांचों तत्वों के माध्यम से आत्माओं को कभी कोई नुकसान तकलीफ ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फल या कोई सब्जी मतलब जहरीली थी या ठीक नहीं थी, वो खाई गई, उससे भी तकलीफ हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरे, गाड़ी गुजर रही थी, पेड़ की डाली थी, सब गाड़ियां गुजर गई, हमारी वाली गुजरी, वो डाली हमारी गाड़ी पे ही गिर गई, सबकी गुजर गई, हमारी वाली पे गिर गई। ऐसा भी, ये भी प्रकृति के साथ हिसाब किताब। या किसी मच्छर ने काटा, कीटाणु जीवाणु, ये जो कोरोना वायरस आया, ये भी एक तरह से प्रकृति का ही हिसाब किताब था। तो बाबा ने कहा ये जो तीन तरीके हैं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, शरीर के संबंध, संपर्क और प्रकृति, इन पांचों के द्वारा धरती पर अगर सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएं, तो ऊपर के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो पहले यहां चुकतू होती इन तरीकों से, पर इनसे पूरे चुकतू नहीं हुए, बच गए, उन बचे हुओं का ऊपर हिसाब होता है। ऊपर में ये तीनों ही तरीके नहीं। अच्छा, बिना शरीर के सजा कैसे मिलती है? आत्मा को शरीर तो है ही नहीं। आप देखिए, संगम युग में शिव बाबा से हमने जितना कुछ भी पाया है वो बिना शरीर के ही पाया है। शरीर सहित बाबा ने हमें कुछ दिया क्या? पहली कंडीशन है अशरीरी बनो, पहला पाठ है देह से न्यारे हो जाओ। योग का पहला अनुभव है मनन चिंतन करो कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, भ्रकुटी में विराजमान शुद्ध आत्मा। तो जीवन मुक्ति मिली तो कैसे मिली? देह के साथ मिली क्या? आत्मा ने अनुभव किया कि ये मेरा पिता है, और ये मेरा पिता मुझे मतलब मुझे सपोर्ट करने आया है, मुझे कीचड़ से निकालने आया है। आत्मा बनके ही तो ये सब कुछ अनुभव हुआ, फिर आत्मा शरीर में रहते दुखों से मुक्त हो गई। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते मुक्त स्थिति का अनुभव किया। किसने अनुभव किया? आत्मा ने अनुभव किया, अनुभूति तो आत्मा ही कर रही। योग का अनुभव किया, ज्ञान का अनुभव किया, शिव बाबा के प्यार का अनुभव किया। हम योग में बैठते हैं, परम धाम में बाबा के पास जाते हैं, बाबा की प्यार भरी किरणें आती हैं, तो आत्मा गदगद हो जाती है, बाबा आपने मुझे कितना प्यार दिया। तो वो प्यार कौन महसूस कर रहा? शरीर को थोड़ी भगवान ने सहलाया, भगवान को तो हाथ ही नहीं, शरीर तो ऊपर था ही नहीं। परम धाम में प्यार का अनुभव किया, आंसू आंख से गिरे, लेकिन प्यार का अनुभव किसने किया? आत्मा ने किया। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे हैं, फरिश्ता बन के बैठे हैं, बाबा की दृष्टि ले रही हैं, बाबा के मस्तक से किरणें आ रही हैं, बाबा के नेत्रों से किरणें आ रही हैं, बाबा का वरदानी हाथ है, और मैं छोटा सा फरिश्ता बाबा की गोद में हूँ, बाबा के पास हूँ, मुझे इंद्रिय सुख अनुभव हो रहा है, वाह बाबा, मैं तो यहीं का रहवासी हूँ, नीचे तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये प्यार का अनुभव किसने किया? शरीर ने किया क्या? शरीर तो नीचे पड़ा था, ऊपर कौन था? सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता, वहां तो शरीर था ही न, कोई शरीर का संबंध याद था, न कोई शरीर का पदार्थ याद था। तो लाइट का शरीर था, उसमें मैं आत्मा थी, और बाबा मुझे प्यार कर रहा था, दुलार कर रहा था, तब भी मेरा मन भर आया, वाह बाबा आप कितना निस्वार्थ प्यार देते हो, आपकी दुनिया तो प्यार की दुनिया। तो प्यार का अनुभव हमने शरीर के साथ कब किया? हमारी दादी गुलजार नंबर वन संदेशी ये की, जब हम टीचर बहनों की भट्टी होती थी तो उस समय भट्टी में जरूर भोग लगता था और बाबा जरूर संदेश भेजते थे। तो एक बार याद है दादी बहनों के लिए संदेश लेके आई है, कॉन्फ्रेंस हॉल की ही बात है, 2002-03 मतलब काफी पुरानी बात है, 18-20 साल पुरानी बात है। और दादी जैसे संदेश सुनाने लगे कि मैं बाबा के सामने गई, बाबा ने कहा मेरी दिल तख्त नशीन बच्ची, बस इतना ही सुना पाई और दादी का गला रुंध गया, मतलब दादी उस प्यार में खो गई, आगे बोल नहीं पाई। तो उस प्यार का अनुभव किसने किया? दादी तो यही थी, ऊपर कौन गया? प्यार बाबा ने किसको अनुभव कराया, किसका स्वागत किया? आओ मेरी दिल तख्त नशीन बच्ची, शरीर तो यही था। तो जब हम प्यार का अनुभव, बाबा की शक्ति का अनुभव, या बाबा के सर्व गुणों का अनुभव, या बाबा की मदद का अनुभव आत्मा रूप में करती, देह रूप में तो हो ही नहीं सकता, देह तो रबड़ है, ऊपर चढ़ा हुआ, करंट आ ही नहीं सकता, करंट आता ही तब है जब हम आत्मा बन जाते। तो आत्मा रूप में हमने बाबा से सर्व अनुभव पाए, तो जब सजा होगी तब भी क्या होगा, लाइट का शरीर होगा, स्थूल शरीर तो यहां जा चुका होगा, तत्वों में मिल चुका होगा, तो उसका अनुभव भी कौन करेगी? आत्मा करेगी, लाइट के शरीर में करेगी। सूक्ष्म वतन में लाइट का शरीर है, प्यार का अनुभव भी हमने लाइट के शरीर में किया। हां जब बाबा साकार में थे तब बाबा साकार शरीर से दृष्टि देते थे, लेकिन आत्मा दृष्टि लेते लेते फिर देह सिनेरी हो जाती थी, वो दृष्टि भी देह से परे कर देती थी। तो सर्व अनुभवों का आधार आत्मा ही है, चाहे प्यार का आधार और चाहे सूक्ष्म वतन में हिसाब किताब चुकतु होने का आधार। तो अब हमको क्या करना है? बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट आईना दिखाया, तो अब हम बच्चों को क्या करना है? अब हम बच्चों को तीव्र गति से अपने जो रहे हुए हिसाब किताब है वो चुकतू करने हैं। और बाबा ने मुरली में कहा था, हिसाब किताब चुकतू करने का आधार है ज्वालामुखी योग। एक होता है साधारण योग, अपन चलते फिरते बाबा की स्मृति में, तो उसमें तो बाबा की स्मृति के साथ और भी भान रहते हैं, पर वो जरूरी भी है क्योंकि अपन कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, उस समय याद करते हैं, तो थोड़ा कर्म की भी स्मृति रहती है और बाबा की भी स्मृति रहती है, दोनों स्मृतियां। बाबा कहता है कर्मयोग में तो ऐसे ही होगा, मटर छील रहे हो तो स्मृति तो है ना भाई, छिलके इधर फेंकने हैं, मटर इधर डालने, ये भी स्मृति है कि बाबा से ऊपर से किरणें आ रही है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, या बाबा मेरे सामने है, या बाबा मेरे साथ है, ये बाबा मुझे देख रहा है। बहुत तरीके हैं कर्मयोग में बाबा को साथ रखने के, लेकिन कर्म की भी थोड़ी स्मृति है, बाबा की भी स्मृति है। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें कर्म अच्छा बनेगा, उसमें विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि बाबा की स्मृति है ना, तो आपका कर्म परफेक्ट होगा और कर्म करते हुए कोई विक्रम कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कर्म का हिसाब जल जाए, चुप्त हो जाए। बाबा ने कहा था बच्चे जैसे रावण को मारते हैं तो थोड़ी देर में फिर जिंदा हो जाता है, फिर कहते हैं बाबा हमने कल तो इसको योग लगा के खत्म किया था, ये कमजोरी फिर आ गई। तो बाबा ने कहा तुमने मारा और वो फिर थोड़ी सांस बची थी, वो फिर जिंदा हो गया, पहले उसको मारो, मारने के बाद उसे जलाओ, और जलाने के बाद उसकी जो राख है ना उसको भी गंगा जी में बहा दो, तब वो चीज खत्म होगी। तो पहले वो संस्कार इतना जल जाए, राख बन जाए, उसका नामो निशान नष्ट हो जाए, तब आत्मा को कोई याद कराएगा ना, अरे भाई तेरे में तो गुस्सा था, वो कहेगा मुझे याद नहीं है, मैंने कभी गुस्सा भी किया है, बिल्कुल याद नहीं, अच्छा तू गुस्सा करके तो दिखा, वो कहेगा मुझे करना ही नहीं आता, तब हम कहेंगे हाँ इसने इसकी राख भी बहा दी, खत्म ही हो गया, ये तो भूल ही गया कि गुस्सा क्या चीज होती। इस कदर संस्कार का खात्मा इस कदर विकर्मों का खात्मा वो होगा ज्वालामुखी योग। और ज्वालामुखी योग कब हो सकेगा? जब कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति का हम ध्यान रखेंगे, अभ्यास करेंगे, और कर्म पूरा होते ही पूरी तरह से अशरीरी होके बाबा के पास बैठेंगे। कर्म है उस समय कर्म की और योग की मिक्स स्मृति, पर कर्म पूरा हो गया तो एक एक सेकंड बचानी है। ऐसा नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, मिलता है। जो बहनें घरों में है, सुबह नाश्ता बना लिया, दोपहर का भोजन, अभी समय है तो बीच में जरूर टाइम मिलता है। जो लोग दुकानों में हैं, एक ग्राहक आया, दूसरा भी आया नहीं, दुकान में थोड़ा समय मिलता है, ऑफिस वालों को भी मिलता है, हर एक को मिलता है। लेकिन लगन हो कि मुझे 5 मिनट का समय है, मैं कोई ना कोई बाबा की अच्छी बात पढ़ूं, या पहले से ही मन में अच्छी बात घूम रही थी उसका बैठ के अनुभव करूं, योग का प्रयोग करूं। एकदम शरीर जुत्ती है, इसको यहीं छोड़ा और मैं गया ऊपर और एकदम लाइट माइट बन के मैंने 5 मिनट ग्लोब के ऊपर लाइट माइट की किरणें डाली, वो मेरी 5 मिनट कितनी बड़ी प्राप्ति के रूप में मेरी जमा हो गई। लेकिन मैं सोचती हूँ 5 मिनट में क्या योग लगेगा, अब घंटा मुझे मिलता नहीं और 5 मिनट में योग लगाती नहीं तो मेरा क्या होगा। तो जो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिले हमको ये लक्ष्य रखना है। और अगर हम इस तरीके से योग लगाते हैं ना तो हमारी स्थिति योग के लिए एवर रेडी हो जाती है। फिर जब हमें थोड़ा ज्यादा भी टाइम मिलता है ना तो उसमें हम अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। अब हमें मान लो अभ्यास है ही नहीं और टाइम मिल भी गया तो भी मन भटकने में ही वो टाइम चला जाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं किया। तो दो दो मिनट भी अभ्यास करो। दादी गुलजार कहती थी कि मान लो आपके पास 2 रुपया आपने गुल्लक में डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, खोलोगे ना तो गुल्लक में बहुत सारा अमाउंट मिलेगा। अब कोई कहता है जी मेरे हाथ में जब इकट्ठे 1,000 रुपए आएंगे ना मैं तो तभी गुल्लक में डालूंगा। ना 1,000 आएंगे ना आप गुल्लक में डालोगे, भाई 2 ही डाल के इकट्ठा कर लो। तो योग भी ऐसे ही इकट्ठा होता है। 1 मिनट आया समय, कोई आ रहा है मुझसे मिलने, वो कहता है जी मैं 2 मिनट में पहुंचा, तो 2 मिनट अशरीरी हो जाओ ना, वो आएगा तो आप उसको अच्छे से दृष्टि दे पाओगे। तो ऐसे ज्वालामुखी योग की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो योग नेचुरल हो जाए। तो हमारे जो रहे हुए हिसाब किताब है वो बाबा ने गारंटी ली है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये भगवान की गारंटी है। और गॉड इज ट्रुथ, वो जो कहता है वो सत्य। तो कदम मुझे बढ़ाने हैं मदद करने के लिए वो तैयार। ओम शांति। 12:03 बाकी हैं, किसी का कोई सवाल है?
किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ भाई साहब हाथ उठा रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कईयों के सवाल तो समाधान हो जाते और कईयों को नए सवाल खड़े हो जाते। हाँ भाई साहब थोड़े आगे आ जाइएगा। धर्मिष्ठा बहन 2 मिनट बैठ जाओ।
हाँ कोई
अगर किसी मोदी ने अपने कर्तव्य की रक्षा करते हुए
दो बातें होती हैं। देखो एक डाकू चाकू चलाता है, एक डॉक्टर चलाता है। डॉक्टर चाकू चलाता है तो इसको इनाम मिलता है, और जब डाकू चलाता है तो बस वही अंतर है दोनों में, क्योंकि एक देश की रक्षा कर रहा है तो रक्षा करने वाले को इनाम मिलेगा। वो अगर 50 दुश्मनों के साथ ऐसा करेगा ना तो जरूर उसको बड़ा सा मेडल मिलेगा। हाँ जी बहन जी, बहन जी हिसाब किताब ये तो एवरेज है 42 जो हम जन्म कहते हैं, लेकिन जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु जल्दी जन्म ये हर एक आत्मा की पूरी काउंटिंग नहीं है। 42 नॉर्मल के 42, लेकिन इस प्रकार का अगर केस है तो उसके अधिक भी हो सकते। ऐसे मैं पूरा तो नहीं बता सकती कि भाई इसके ज्यादा और इसके कम, लेकिन जो आपकी इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस होते होते परफेक्ट बनता है ना, तो हो जाएगा। इसलिए होप रखो, हो जाएगी। ऐसी भी स्टेज आएगी कि आपका योग टूटेगा ही नहीं, बस आप लगे रहो, करते जाओ करते जाओ। संगम युग असंभव को संभव करने का युग, तो इसमें यह असंभव काम भी संभव हो जाएगा। होप रखो। नहीं देखो, ये नहीं पता कि किसकी चुप्तू होगी किसकी नहीं होगी। कुल मिला के ये है कि हमने इतना योग लगाया कि हमारे ये भी या बाकी भी सभी चुप्तू हो गए। इतना योग लगाया, इतना पुण्य कर्म किए, तो ये नहीं काउंटिंग की क्रोध की सजा बची थी कि ये लोभ की सजा थी, कि ये काउंटिंग अपन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के कोई भी गलत कर्म था तो वो योग से हमने चुकतू कर लिया, उसमें सब प्रकार की बातें आ गई। केवल एक दृष्टि की बात को अलग से नहीं ले सकते ना, उसको अपन कुल मिला के ओवरऑल कहेंगे भी देह अभिमान जनित जो भी हमारी बातें थी वो हमने योग बल से चुकतू कर, खाता क्लियर हो गया, चाहे वो कुछ भी थी।
ओम शांति दीदी। ये प्रश्न मेरे साथ साथ बहुत आत्माओं के भी मन में उठता है, या जो शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं ना तब ज्यादा उठता है, कि हर कल्प अगर ड्रामा हूबहू रिपीट होना है तो अभी क्या हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? तो ये प्रश्न कई जगह पूछा पर आपसे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। थैंक यू।
देखो, ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होगा तो भगवान भी तो हमको हर कल्प में मिलेगा ना। सबसे सुंदर बात ये है कि ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होगा, इस कल्प भी भगवान मिला, अगले कल्प भी मिलेगा, अगले कल्प भी मिलेगा। कई बार कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि इस कल्प भी मुझे ये दुख मिला तो अगले कल्प भी यही दुख मिलेगा। अरे, दुख की ही तो बलिहारी है कि भगवान मिला, तो आप उसको क्यों याद करते हो? आप इसको याद करो ना कि भगवान मिले। अच्छा, कल्प कल्प यही रिपीट होगा। अब आप ये बताओ, महीने में अपने को तनख्वाह मिली 1 लाख और महीने में खा के खत्म कर दी, तो हम ये नहीं कहते कि जी तनख्वाह तो महीने के अंत में खत्म हो ही जानी है, तो कमाने का क्या फायदा? अरे, 1 महीना तो चली, अगले महीने फिर कमाओ फिर खाओ। तो इसलिए हर कल्प पुरुषार्थ करना है, हर कल्प रिपीट करना है, जो भी रोल है वो हर कल्प प्ले करना है। हाँ, अब हमारे सामने मार्जिन है कि हम जितना चाहे पुरुषार्थ करें। बाबा ने हमको ये नहीं कहा कि देख बच्ची, तुम प्रजा में आने वाली हो, जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम प्रजा से ऊपर नहीं जा सकती। मुझे तो कहा ही नहीं। अभी आज भी मुरली में कहा कि बच्चे तुम मम्मा बाबा के गद्दी तख्त नशीन बनो, वारिस बनो। हम सबके लिए बाबा ने मुरली चलाई, तो आज भी बाबा मार्जिन दे रहा है कि चाहो तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन सकते हो। तो ये तो मेरी हिम्मत है कि मैं कितनी दौड़ लगाऊं। भगवान ने तो अभी भी रेस ओपन रखी हुई है।